सिद्धेर्य ओम नमः सिद्धेर्य ओम नमः सिद्धेर्य ओम श्रुतात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वर्छायाणम् नमो लोए सौवसाहूणम् निट्ठवियट्ठकम्मम् वीरम्णमियूणपत्तसौवट्ठम् अणुभागस्सविहत्तिम् जहो वै संपरुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिर्षभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। अभी हम 22 पृष्ठ पर आए हैं, पांचवी पुस्तक में 22 पृष्ठ 22 नंबर। विशेषार्थ अभी पढ़ेंगे। अनुभाग के विभक्ति की बात यहाँ चल रही है और उसके एक जीव की अपेक्षा काल हम देख रहे थे। ओघ में हमने देखा था, अभी यहाँ आदेश की अपेक्षा मार्गणाओं में देख रहे थे। उसका विशेषार्थ पढ़ेंगे तो कल क्या बात हो रही थी फिर याद आ जाएगी अपने। जिन पर्यायों में मौनी कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो सकता है, कहाँ हो सकता है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टि होना चाहिए, तो वहाँ उसका उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो सकता है। तो जिन जिन मार्गणाओं में होता है उनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय बनता है। क्यों? अनुत्कृष्ट के साथ उस मार्गणा में जन्म लिया या उस मार्गणा में आया और दूसरे ही समय में उत्कृष्ट का बंद किया, तो ये एक समय घटित हो सकता है। या उत्कृष्ट मरण के समय में या उस मार्गणा छोड़ने के पहले उत्कृष्ट था, अंतर्मूर्त मान लेते उत्कृष्ट रहा, फिर अनुत्कृष्ट हुआ और अनुत्कृष्ट के साथ वो मार्गणा छोड़कर अन्य मार्गणा में गया, तो भी एक समय घटित होगा। किंतु यदि उन पर्यायों में उत्कृष्ट अनुभाग बंद न हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि पूरी लाइफ में उसको उत्कृष्ट अनुभाग उस पर्याय में उस मार्गणा में उसको होगा ही नहीं, और पिछले भव से भी उत्कृष्ट अनुभाग को न लाया गया हो, उसमें भी नहीं बांधा और पूर्व भव से भी नहीं लाया है, तो जीवन भर अनुत्कृष्ट अनुभाग की ही सत्ता रह सकती है। ये तो उन्होंने पहले नियम बताया, इसको हम सुनकर अभी डिराइव कर सकते हैं कौन सी मार्गणा में कितना हो सकता है काल। तो कहते इसी से यानी इसी कारण से नरक गति में अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहा है। अनुत्कृष्ट की बात चल रही है यानी उसने पूरे भव में उत्कृष्ट बांधा ही नहीं और ना ही पूर्व भव से लाया है, तो उसके अनुत्कृष्ट ही रहेगा। तो हमने 33 सागर देखा था नरक में, पंचेंद्रिय तिर्यंच आदि में तथा तीन प्रकार के मनुष्यों में, पंचेंद्रिय तिर्यंच आदि में पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति, और तीन प्रकार के मनुष्य में सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी, उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो सकता है, अतः उनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय बन जाता है। तथा इन मार्गणाओं की काय स्थिति, दो शब्द आते हैं, एक होती है भव स्थिति और एक है काय स्थिति। भव स्थिति यानी एक लाइफ स्पैन उसका एक ही, और काय स्थिति का अर्थ है लगातार मनुष्य में से मनुष्य, मनुष्य में से मनुष्य, मनुष्य में से मनुष्य ही होता रहे तो उत्कृष्ट कितने काल तक रहेगा उसको कहेंगे काय स्थिति। जैसे पंचेंद्रिय तिर्यंच अपनी मार्गणा हो तो पंचेंद्रिय तिर्यंच ही बना रहे, तो फिर वो असंगी भी हो सकता है, संगी भी हो सकता है, अपर्याप्त भी हो सकता है, पर्याप्त भी हो सकता है। उसका उत्कृष्ट काल यहाँ काय स्थिति कहलाती है। तथा इन मार्गणाओं की काय स्थिति तीन पल्ले अधिक पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। हमने कल डेराइव किया था कैसे होता है पृथक्त्व पूर्व या पूर्व कोटि पृथक्त्व कहो, ये सामान्य कथन हुआ। तो ये पृथक्त्व की संख्या अलग अलग मार्गणाओं में अलग अलग है। सबके लिए क्या कहा, पूर्व कोटि पृथक्त्व प्लस तीन पल्य। पर हमने देखा था पंचेंद्रिय तिर्यंच के लिए 95 पूर्व कोटि प्लस तीन पल्य, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त के लिए 47 और तीन पल्य, और योनिमति के लिए 8 पूर्व कोटि, उसमें से एक कम करना, 7 पूर्व कोटि तिर्यंच, सॉरी तिर्यंच में
15
कैसे, हाँ संगी संगी सॉरी 15 बराबर है 15, मैंने वो 7 नीचे का मनुष्य निका पड़ा। तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति में तो 15 पूर्व कोटि और तीन पल्य, मनुष्यों में भी हमने देखा था, मनुष्यों में लगातार पर्याप्त भोग करना, एक अपर्याप्त करना, फिर पर्याप्त के तीन वेदों के साथ तीन बार आठ आठ आर्त्रिक 24, फिर एक अपर्याप्त भोग, फिर 24, 48 में से 47 लेना और एक तीन पल्ले वाली आयु सामान्य मनुष्य में। मनुष्य पर्याप्तों के लिए 24 में से एक कम करना, 23 और एक, और मनुष्यनी के लिए 7 और तीन पल्य।
यहाँ पे जो हमने अनुत्कृष्ट का जगने काल एक समय देखा, वो कौन सी अपेक्षा से देखा?
देखो अनुत्कृष्ट का, जैसे वो जीव उत्कृष्ट का बंद कर सकता है,
हाँ।
और उत्कृष्ट अनुभाग अंतर्मुहूर्त तक ही रहता है, उसके हाँ। बाद वो नियम से अनुत्कृष्ट हो ही जाता है। अब मरण के पहले उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट हुआ, एक समय तक अनुत्कृष्ट रहा और मरण होकर वो मनुष्य में से तीन इंच में चला गया,
पर तो वहाँ पे तो भावना बदल जाती है।
इसीलिए मनुष्य में रहते हुए अनुत्कृष्ट एक समय हुआ ना, मरण के समय एक समय के लिए अनुत्कृष्ट रहा, बाद में मार्गणा ही बदल गई। यह अंतर नहीं देख रहे, काल देख रहे, अंतर में फिर उसी मार्गणा में लाना था हमको। चलो हाँ देखो, इन मार्गणाओं की काय स्थिति तीन पल्ले अधिक पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है, अतः इन मार्गणाओं में अनुत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट काल भी इतना ही कहा है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त अपर्याप्त करना, अपर का तक हुआ अपर्याप्तक आदि में उत्कृष्ट अनुभाग बंध नहीं होता, वहां बंध नहीं है। पूर्व भव से वो हो सकता है उत्कृष्ट अनुभाग के साथ जन्मा हो। तथा एक जीव की अपेक्षा इन मार्गणाओं का काल भी अंतर्मुहूर्त ही है, अतः यहाँ उत्कृष्ट की बात नहीं हो रही, उत्कृष्ट तो पहले देख चुके हैं, अभी अनुत्कृष्ट की बात चल रही, अनुत्कृष्ट का लगातार काल, अतः इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त ही कहा है। भवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग पर्यंत के देवों में भी यदि उत्कृष्ट अनुभाग बंद हुआ तो अनुत्कृष्ट अनुभाग का काल एक समय, अन्यथा अन्यथा ने उत्कृष्ट जो है वो अपनी अपनी स्थिति प्रमाण होता है। यदि वो बंद करेंगे उत्कृष्ट का तो अनुत्कृष्ट का एक समय हो सकता है, और वो नहीं करेंगे तो पूरी लाइफ टाइम तक अनुत्कृष्ट ही रहेगा। अनंत से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में और उत्कृष्ट अनुभाग का घात न होने पर वह जीवन भर रह सकता है, और घात होने पर उसका अंतर्मूर्त काल उपलब्ध होता है, तथा जीवन के अंत में अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर उत्कृष्ट अनुभाग का घात होने पर अंतिम अंतर्मूर्त में अनुत्कृष्ट अनुभाग पाया जाता है। और जो अनुत्कृष्ट अनुभाग के साथ इन देवों में उत्पन्न होता है उनके जीवन भर अनुत्कृष्ट अनुभाग पाया जाता है। उस मार्गणा का उत्कृष्ट समझना उतना ही रहेगा। क्यों? कोई कार्य नहीं करेंगे। कौन सा कार्य? विसंयोजना आदि का। विसंयोजना होगी तो वहां पर अनुभाग कंडक घात हो गए तो अनुभाग घटेगा। परिणाम वो चौथे गुणस्थान के योग्य चल रहा है उसमें परिणाम की विशुद्धि कब बढ़ेगी कि जिससे कांडक घात होगा? हाँ, तो विसंयोजना में उससे नहीं कुछ होता है, कांडक घात होता है तब। इसी से यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों प्रकार के अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहा है। ये तो कल हमने पढ़ा था, उसी का विशेषार्थ। अब आगे गति मार्गणा में हमने नारकी में, देव में, मनुष्य में, तिर्यंच में देख लिया है। अब इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा बात चलेगी। इंद्रिय की अपेक्षा बादर एक इंद्रियों में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्तकम क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण। ऐसा क्यों लिखा है? देखो, कोई जीव उत्कृष्ट अनुभाग पंचेंद्रिय में बांध कर संगी पंचेंद्रिय में बादर एकेंद्रिय में जन्म लिया उसने, तो अनुभाग का घात होने के लिए अंतर्मूर्त में तो अनुत्कृष्ट हो ही जाता है। अनुभाग कांडक घात की बात नहीं, एक अंतर्मूर्त में अनुभाग अनुत्कृष्ट होता है। तो ये अनुत्कृष्ट हुआ उसके लिए कितना काल लगा? एक अंतर्मूर्त। वो जो अंतर्मूर्त है वो बादर एकेंद्रिय के काल में से कम करना है। तो बादर एकेंद्रिय में रहने का कम से कम काल कितना है? तो बादर एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त जीव की जो आयु है वो भी मिनिमम आयु, उसको क्षुद्र भव कहते हैं। क्षुद्र भव ग्रहण, ये जो श्वास के 18वें भाग प्रमाण कहते हैं उसको यहाँ क्षुद्र भव ग्रहण कहा। उसमें से वो उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट होने वाला काल माइनस करना अंतर्मूर्त, जो बचा है उतना अनुत्कृष्ट का जघन्य काल। एक समय नहीं कहा, ख्याल में आया ना? क्यों एक समय क्यों नहीं कहा? यदि अनुत्कृष्ट के साथ आता और एक समय में उत्कृष्ट बंध करता तो उत्कृष्ट हो सकता था, परंतु यह उत्कृष्ट लेकर आया है और फिर वो अंतर्मूर्त में उसने अनुत्कृष्ट किया।
और अगर एकेंद्रिय में भी हमने उत्कृष्ट, तो जो पंचेंद्रिय से आया हुआ जीव उत्कृष्ट अनुभाग के साथ आया था वही देखा,
वही दे,
तो वहाँ यहाँ पे मिनिमम काल लेना है तो उसका अंतर्मूर्त कम करके।
हाँ, उसका जो अंतर्मूर्त है अनुत्कृष्ट होने के लिए जो अंतर्मूर्त लगता है उतना क्षुद्र भव में से कम करना, जो रिमेनिंग काल है वो अनुत्कृष्ट का जघन्य। चल मैं ही बात देखो, फिर इसको पढ़ती हूँ। बादर एकेंद्रिय का पहले काल बताया, फिर अनुत्कृष्ट का बताएंगे। बादर एकेंद्रिय में रहने का जघन्य काल कितना है? क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है। जो जीव, अरे मैं नीचे पढ़ रही थी, विशेषार्थ में गई मैं। देखो, इंद्रिय की अपेक्षा ऊपर पढ़ रही, बादर एकेंद्रियों में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्तकम क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण, और उत्कृष्ट काल, अभी कोई अनुत्कृष्ट के साथ ही बादर एकेंद्रिय में उत्पन्न हुआ है तो लगातार बादर एकेंद्रिय में ही रहेगा,
अंगुल के असंख्यात,
तो अंगुल के असंख्यात विभाग काल, वो कितना काल है?
असंख्यात,
असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी। उत्कृष्ट काल, हाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं ना, तो मध्यम समझना, असंख्यात असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी प्रमाण होता है। बादर एकेंद्रीय पर्याप्त को में, अभी पर्याप्त लिया पहले, बादर एकेंद्रीय इन जनरल कॉमन लिया था, पर्याप्त पर्याप्त दोनों को, बादर एकेंद्रीय पर्याप्त को में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल उत्कृष्ट अनुभाग काल से कम अंतर्मूर्त प्रमाण है। बादर एकेंद्रीय पर्याप्त की मिनिमम आयु जघन्य आयु अंतर्मूर्त तो है ही, वो क्षुद्र भव ग्रहण नहीं हो सकती क्योंकि पर्याप्त जीव है, पर्याप्ति पूरी होगा फिर अंतर्मूर्त में वो आयु बांधेगा फिर मरेगा, इसलिए अंतर्मूर्त। जहां हमने बादर एकेंद्रियों में क्षुद्र भवन में से अंतर्मूर्त कम किया था, अब यहां इसका यथायोग्य अंतर्मूर्त है उसमें से उत्कृष्ट का अंतर्मूर्त कम करना। उत्कृष्ट अनुभाग अनुत्कृष्ट होने के लिए जितना काल लगता है उतना काल कम करना। अनुत्कृष्ट का तो हम डिराइव कर रहे हैं, माइनस किसको करना, उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट होने के लिए जो अंतर्मूर्त लगता है, इसलिए मैंने कहा उत्कृष्ट का काल कम करना। उतने काल तक उत्कृष्ट रहा और बाद में अनुत्कृष्ट हुआ तो इसकी मिनिमम आयु में से उत्कृष्ट में रहने का अंतर्मूर्त माइनस करेंगे तो अनुत्कृष्ट का काल आएगा।
यहाँ पे ये अपर्याप्त और पर्याप्त बादर बताए हैं, उसका अलग अलग अंतर्मूर्त बताया है जो उत्कृष्ट अनुभाग के साथ रहने का, तो उस वहाँ पे फर्क होगा कुछ,
किसमें अनुभाग में फर्क होगा कि काल में?
नहीं काल में
डेफिनेटली
लब्धि अपर्याप्त तक,
लब्धि अपर्याप्त तक में जघन्य आयु उसकी क्षुद्र भवे उसमें से अंतर्मूर्त माइनस किया।
यहाँ पे जो उत्कृष्ट काल जो
माइनस करने का काल
अनुभाग,
हाँ वो तो उतना ही रहेगा,
वो उतना ही रहेगा,
वो उतना ही माइनस करना, वो क्षुद्र भवन में से भव में से माइनस करना और इसको जो मिनिमम इसकी पर्याप्त की आयु है उसमें से माइनस करना। और उत्कृष्ट उत्कृष्ट काल यानी अनुत्कृष्ट में रहने का उत्कृष्ट काल, कोई जीव बादर एकेंद्रीय पर्याप्तों में जन्म लेता है अनुत्कृष्ट के ही साथ, और वहां तो कुछ उत्कृष्ट बांधने का सवाल नहीं है, तो लगातार बादर एकेंद्रीय पर्याप्त बादर एकेंद्रीय पर्याप्त बादर एकेंद्रीय पर्याप्त रहेगा तो कितने काल तक रहता है, तो संख्यात हजार वर्ष, एक भव की बात नहीं है, लगातार बादर पर्याप्त में रहने का काल। हाँ बादर एकेंद्रीय जहां लिया वहां पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों लिया। देखो अकेले बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त में रहने का लगातार काल अंतर्मूर्त, लगातार बादर एकेंद्रीय पर्याप्तों में रहने का काल संख्यात हजार वर्ष, पर कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त भी मिलाते रहो तो कितना अंगुल के संख्यात विभाग। बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तकों में, अभी अपर्याप्तकों की बात चल रही है, अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल उत्कृष्ट अनुभाग काल से कम क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है। यही बात हमने सामान्य में घटित की थी क्योंकि सामान्य लेते हैं तो पर्याप्त पर्याप्त में जो जघन्य उसको लेना था, है ना? अभी अकेले अपर्याप्तों में घटित करना है तो कथन वही का वही होगा। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है जिसकी बात चल रही है, बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तकों में लगातार रहने का काल अनेक भव भी हो जाए तो भी अंतर्मूर्त ही होगा। सूक्ष्म एकेंद्रियों में, अभी ये सूक्ष्म एकेंद्रिय इन जनरल चल रही बात, अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल उत्कृष्ट अनुभाग काल से कम क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है। क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रिय कहेंगे तो सूक्ष्म एकेंद्रियों में अपर्याप्त की आयु कम है उसको लेना, उसमें से उत्कृष्ट वाला अंतर्मूर्त कम करना। और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है, क्या कहा, सूक्ष्म एकेंद्रीय इन जनरल पर्याप्त, कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त, लगातार अपर्याप्त में रहे तो कितना काल रह सकता है, एक अंतर्मूर्त, लगातार पर्याप्त में भी रहे तो एक अंतर्मूर्त, परंतु सूक्ष्म जीवों में कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त तो असंख्यात लोक। देखो अंगुल के असंख्यात विभाग में असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, तो असंख्यात लोक कितना बड़ा काल है, ख्याल में आती कुछ बात? अभी सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त अलग करेंगे। सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त को में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल उत्कृष्ट अनुभाग के काल से कम अंतर्मूर्त है, क्योंकि पर्याप्तों की जो आयु है जघन्य भी वो अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट भी लगातार रहने का काल अंतर्मूर्त ही होगा, और उत्कृष्ट काल संपूर्ण अंतर्मूर्त प्रमाण है।
या असंख्यात लोक अनंत ही हो जाएगा ना?
असंख्यात लोक कभी अनंत नहीं होगा। हाँ, क्यों क्यों नहीं होगा?
असंख्यात लोक प्रमाण।
हाँ, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण में कितने प्रदेश है तो असंख्यात ही है, और उतने समय हमने गिने तो भी असंख्यात ही होगा, वो भले वो काल का प्रमाण बहुत बड़ा है फिर भी असंख्यात में ही रहेगा। हाँ, बड़ा अंतर्मूर्त। सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तकों में जैसे हमने देखा एक अंतर्मूर्त में कितने होते हैं भव एकेंद्रिय पर्याप्तों के या अपर्याप्तों के, पर्याप्तों की बात है
तो
उसका जो अंतर्मूर्त
तो
होगा उत्कृष्ट
है,
उसकी भव काय स्थिति लेना। संपूर्ण अंतर्मूर्त का अर्थ है लगातार
पर्याप्त
लगातार सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तकों में रहने का जो अंतर्मूर्त है बड़ा, वो संपूर्ण अंतर्मूर्त। सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तकों के बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त के समान भंग है, यानी उसमें से क्षुद्र भव में से वो माइनस करना है, और बड़ा से बड़ा काल भी अंतर्मूर्त कहेंगे। विकलेंद्रिय तथा विकलेंद्रिय पर्याप्तकों में पहले सामान्य से विकलेंद्रिय की बात करें, और विकलेंद्रिय पर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल उत्कृष्ट अनुभाग के काल से हीन क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है। ये सामान्य विकलेंद्रियों में, उसमें भी लब्धिय पर्याप्तक लेना और अंतर्मूर्त है, ये विकलेंद्रिय सामान्य में रहने का। ये और अंतर्मूर्त किसके लिए कहा? विकलेंद्रिय पर्याप्तक के लिए कहा। अनुत्कृष्ट विभक्ति का जघन्य काल विकलेंद्रिय पर्याप्तकों में कितना होगा? जघन्य काल, तो विकलेंद्रियों की जो जघन्य आयु है पर्याप्तों की कितनी होगी? अंतर्मूर्त, उसमें से वो उत्कृष्ट का काल कम करना। और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है, इसमें तो दोनों को लेना, विकलेंद्रिय इन कॉमन और पर्याप्त विकलेंद्रिय। संख्यात हजार वर्ष पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का उत्कृष्ट के अनुत्कृष्ट, यहाँ अनुत्कृष्ट की बात चल रही थी, उत्कृष्ट अनुभव। अच्छा, उत्कृष्ट ही बता रहे, देखो क्या कहते हैं। पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ये एक समय क्यों कहा? मार्गणा में एक समय घटित हो सकता है, क्यों? अंत में उसने उत्कृष्ट अनुभाग को बांधा, एक समय तक रहा और दूसरे समय में मर गया, पंचेंद्रिय में से कहीं एकेंद्रिय में चला गया, द्विंद्रिय में चला गया, या पंचेंद्रिय पर्याप्त में से अपर्याप्त में गया, अन्य किसी मार्गणा में गया। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अनुभाग बंद करने पर अंतर्मूर्त में अनुत्कृष्ट हो ही जाता है, तो यहाँ उत्कृष्ट ही का ही काल बताना है उनको। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय है, यह हमने देखा था, उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट हुआ और एक समय में मर गया या अन्य मार्गणा में उत्पन्न हुआ। और उत्कृष्ट काल क्रम से, अभी पंचेंद्रिय इन जनरल बात चल रही है, यहाँ सीरियन चाहे मनुष्य की बात नहीं, पंचेंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल क्रम से पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर, जिसको हम साधिक 1000 सागर कहेंगे। और अकेले पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में रहने का उत्कृष्ट काल 100 पृथक्त्व सागर। विशेषार्थ बादर एकेंद्रिय का जघन्य काल यानी बादर एकेंद्रिय पर्याय का ही जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है। जो जीव उत्कृष्ट अनुभाग को लेकर बादर एकेंद्रिय में उत्पन्न होता है वह एक अंतर्मूर्त में उसका घात कर देता है। अतः उसके अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मूर्त कम क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण बतलाया है, तथा उत्कृष्ट काल बादर एकेंद्र की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण बतलाया है। कितनी देखी थी याद है ना?
अंगुल
का संख्या तो आगे भी विकलेंद्रिय पर्याप्तक पर्यंत इसी प्रकार जानना चाहिए। यानी वो बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों में घटित किया, अपर्याप्तों में अकेला घटित किया, सूक्ष्म में दोनों में घटित किया, ऐसे विकलेंद्रिय पर्याप्त तक अर्थात अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल तो उत्कृष्ट अनुभाग के काल से रहित अपनी अपनी जघन्य भवस्थिति प्रमाण है। देखो ये भवस्थिति लिया है, यानी एक आयु उसमें से जघन्य वो लेना, आयु जघन्य लेना और उसमें से उत्कृष्ट का अंतर्मूर्त माइनस करना। और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण है। दो शब्द है ना, भव स्थिति और काय स्थिति। काय स्थिति का लगातार उसी पर्याय में मरकर वहीं पर जन्म लेता रहे तो उसको काय स्थिति कहेंगे। पंचेंद्रिय सामान्य और पंचेंद्रिय पर्याप्त में उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल पूर्ववत एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय है क्योंकि इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो सकता है, तथा उत्कृष्ट काल पंचेंद्रिय सामान्य और पंचेंद्रिय पर्याप्त की काय स्थिति प्रमाण है। यानी उसने उत्कृष्ट का बंद ही नहीं किया और उत्कृष्ट के साथ उसमें जन्म भी नहीं लिया है तो उसका अनुत्कृष्ट ही लगातार बना रहा। अब काय मार्गणा, काय की अपेक्षा पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक और वायु कायिकों में मोनीय कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल उत्कृष्ट अनुभाग के काल से हीन क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, जैसे हमने पहले देखा था। और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है, वो लोक करना। हमने बादर एकेंद्रिय इन जनरल भी यही बात देखी थी, असंख्यात लोक
सूक्ष्म में देखा था ना। सूक्ष्म में देखा था, असंख्यात लोक तो सूक्ष्म में देखा था।
बादर में हमने अंगुल
का
असंख्यात था। यहाँ एक एक काय में बात लिया, सूक्ष्म में हमने असंख्यात लोक देखा था, अब यहाँ सूक्ष्म भी है और बादर भी है, दोनों इकट्ठा लिए, परंतु अपने अपने काय अलग अलग लिए। वहां सभी एकेंद्रिय इकट्ठा लिया था
तो या पृथ्वी का एक लिया, वहां पे बादर और सूक्ष्म दोनों लेना है।
हाँ, जब वो पृथ्वी का एक लेते तो बादर पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, पर्याप्त पर्याप्त सब आ गए। देखो यहाँ किसको छोड़ा, कौन से काय वाले को, वनस्पति को, पांच में से वनस्पति को छोड़ा, क्योंकि निगोद में ही रहने का उत्कृष्ट काल कितना है,
ढाई पुद्गल
पर आता है। इसी प्रकार अभी जो हमने देखा है, उसी प्रकार बादर पृथ्वी कायिक, बादर जल कायिक, बादर तेजस कायिक और बादर वायु कायिकों में जानना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि इनमें उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है। एक एक काय अलग लिया है और उसमें बादर लिया है, बादर एकेंद्र नहीं लिए। यहाँ पर कर्म स्थिति प्रमाण का अर्थ होता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। बादर पृथ्वी का एक पर्याप्तक, बादर जल का एक पर्याप्तक, बादर तेजस का एक पर्याप्तक और बादर वायु का एक पर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त, वो अंतर्मूर्त वाली आयु में से वो एक अंतर्मूर्त कम करना, यानी अंतर्मूर्त रहेगा। और उत्कृष्ट काल संख्यात 1000 वर्ष है, जैसे हमने एक केंद्रीय पर्याप्तक में भी लिया था, बादर एक केंद्रीय पर्याप्त में, तथा इन्हीं अपर्याप्तकों में बादर एक केंद्रीय अपर्याप्तक के समान भंग है। यानी जघन्य में तो क्षुद्र भवन में से अंतर्मूर्त कम करना और उत्कृष्ट में पूरा अंतर्मूर्त लेना। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म अपकायिक, सूक्ष्म तेजस कायिक और सूक्ष्म वायिकायिकों में मोहिनी कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल कुछ कम क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, जैसे हमने सूक्ष्म में देखा था ना, असंख्यात लोक प्रमाण। इनके पर्याप्तक और अपर्याप्तकों में सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तक और सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के समान भंग है, उसका उत्कृष्ट काल अपना अपना अलग लेंगे तो अंतर्मूर्त होता है। बादर वनस्पति कायिकों में, अब बादर वनस्पति कायिक को अलग लिया, बादर एकेंद्रियों के समान बादर वनस्पति कायिक पर्याप्तकों में बादर एकेंद्रीय पर्याप्तक के समान और बादर वनस्पति का एक अपर्याप्तकों में बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तकों के समान भंग है। सूक्ष्म वनस्पति का एक तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्तकों में क्रम से सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तक और सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तक के समान भंग है। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीरी जीव, अभी इसमें प्रत्येक शरीरी और साधारण शरीरी ऐसे दो भाग अलग बताएंगे। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीरी पर्याप्तक और अपर्याप्त जीवों में बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त और बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त के समान भंग है। निगोदिया जीवों में, अभी इसमें अलग बात कर रहे हैं, मोहिनी कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल कुछ कम क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल ढाई पुद्गल परावर्तन प्रमाण है। ये यहाँ डिफरेंस है इसलिए इसको अलग से बताया। बादर निगोदिया जीवों में बादर पृथ्वी का एक के समान भंग है और बादर निगोदिया पर्याप्तक तथा अपर्याप्तकों में बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त और अपर्याप्त के समान भंग है। सूक्ष्म निगोदिया जीवों में सूक्ष्म पृथ्वी का एक के समान भंग है। त्रसकायिक तथा त्रसकायिक पर्याप्तकों में मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय है। उत्कृष्ट की बात चल रही है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, जैसे हमने पंचेंद्रियों में घटित किया था एक समय और फिर वो त्रस छोड़कर एक स्थावर में चला जाएगा, तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल क्रम से पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 2000 सागर, त्रस की स्थिति है ये और 2000 सागर है। पंचेंद्रिय की कितनी देखी थी, पूर्व कोटि से अधिक 1000 सागर, हाँ, और 100 पृथक्त्व,
100 पृथक्त्व
नहीं, 100 सागर पृथक्त्व, यानी 1000 सागर ही होता है ना, बनकु 100 सागर पृथक में 700-800 सागर ऐसा होगा। विशेषार्थ ऊपर कही गई स्थावर काय संबंधी मार्गनाओं में भी पहले के समान ही अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल उत्कृष्ट अनुभाग काल से हीन अपनी अपनी भव स्थिति प्रमाण है, यानी एक आयु लेना, और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण है, यानी उसी पर्याय में रहने का लगातार काल। सामान्य त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्तकों में उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल पूर्ववत जानना चाहिए, तथा इनमें उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो सकने के कारण यहाँ हो सकता है, इसलिए अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण है, इसलिए इन सब में उक्त प्रमाण काल कहा है। अब योग मार्गणा। योग की अपेक्षा पांचों मनुयोगी और पांचों वचन योगियों में मौन्य कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि वो उस योग में रहते हुए उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट हुआ और एक समय में योग पलटा, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। औदारिक काय योगियों में मौन्य कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष है। लक्ष्मी बहन, ये पता चला कैसे है 22,000 वर्ष? हाँ, बादर पृथ्वी का, उसके तो एक ही काय योग ही रहता है, और कुछ कम क्यों कहा? अनुत्कृष्ट की कुछ कम 22,000 वर्ष,
उत्कृष्ट का अंतर्मूर्त कम किया, जो पर्याप्त हो गया, बावदारी का योग चालू हो गया, उसमें उत्कृष्ट का काल कम कर दिया।
अनुत्कृष्ट का चल रहा है ना, अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल, तो 22,000 वर्ष तो उसकी पूरी आयु है, परंतु शुरू में औदारिक का योग नहीं था ना, औदारिक मिश्र का योग था।
ये मिश्र का काल से ये उत्कृष्ट काल है, उत्कृष्ट वाला जो अंतर्मूर्त है वो बड़ा होगा कि मिश्र का काल बड़ा होगा?
देखो, उसको तो माइनस करना ही नहीं उसमें से, हमें तो मैक्सिमम लेना है।
नहीं नहीं, बादर पृथ्वी का एक की अपेक्षा हम ये काल देख रहे हैं, तो वहाँ बादर पृथ्वी का एक में तो उत्कृष्ट बंद होता ही नहीं है,
अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल हम देख रहे हैं। तो अनुत्कृष्ट का जब उत्कृष्ट काल देखना है तो वो माइनस करके नहीं देखना है,
तो उत्कृष्ट काल देखना है ना,
मिश्र का काल बात करना है, उत्कृष्ट का काल नहीं माइनस करना, औदारिक मिश्र का काल माइनस करना है। अब औदारिक मिश्र का योगियों में मौन्य कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल कुछ कम क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, क्योंकि क्षुद्र भव वालों को औदारिक मिश्र का योग ही होता है, और उसमें से वो माइनस करना एक अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, ये औदारिक मिश्र का काल ही अंतर्मूर्त होता है। वैक्रिय काय योगियों में मौन्य कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, क्योंकि ये तो वैक्रिय काय योग वाले तो उत्कृष्ट बांध भी सकते हैं, और जब उत्कृष्ट बांध कर वैक्रिय काय योग का एक समय रहा तब उसने अनुत्कृष्ट कर दी और अन्य योग में चला गया, मनोयोग या वचन योग में, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। वैक्रिक मिश्र काय योगियों में मौन्य कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। कार्मण काय योगियों में मौन्य कर्म की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। यानी उतने उत्कृष्ट के साथ ही वो कार्मण काय योग में रहा और वैसे अन्य भव में चला गया, तो तीनों ही समय तक, ये किस में लेना है, सूक्ष्म एकेंद्रियों में हमने देखे थे तीन समय घटित होते हैं। आहारक काय योगी और आहारक मिश्र काय योगियों में मौन्य कर्म की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि ये तो जितना है उतना ही अनुभाग रहेगा, इसमें कोई कार्य नहीं होगा क्षपण आदि का। इतनी विशेषता है कि अब वो मरण की अपेक्षा घटित करेंगे। आहार का योगियों में जघन्य काल एक समय है, क्योंकि आहारक का योग में तो मरण है, आहारक मिश्रम में मरण नहीं होता, इसलिए वहां तो अंतर्मूर्त लिया और इसमें एक समय भी घटित होगा।
आहारक का योग में योग पलटने की अपेक्षा भी हो सकता है।
आहारक का योग पलट कर कहां जाएगा? मूल शरीर में आए तो योग, ये लास्ट वाला योग पलटना, नहीं तो आहारक का योग, मनोयोग और वचन योग, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त तो है ही है। नहीं ख्याल में आई बात?
आहारक
का योग का भी एक अंतर्मूर्त काल है ही, केवल मरण होने पर एक समय घटित होता है, एक समय में कोई योग नहीं चेंज होगा, एक समय में योग परिवर्तन नहीं होगा। आहारक का योग में आया है, एक समय में मरण गया है, तो उसका एक समय घटित होगा। देखो विशेषाज, कोई एक मनोयोगी या वचन योगी,
आहारक का योग का जो अंतर्मूर्त है, जो वो जो आहारक शरीर के साथ जाता है, तभी उसका योग नहीं पलटेगा।
योग पलटता है ना, मनोयोग वचन योग होते हैं,
होता है ना,
तीन योग उसके भी होते हैं,
होते हैं तो उसकी अपेक्षा एक समय नहीं होगा,
एक समय होता ही नहीं योग का।
नहीं नहीं योग का नहीं, उत्कृष्ट का अनुत्कृष्ट का,
देखो उत्कृष्ट का काल कितना होगा, क्योंकि यहाँ उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट होने का तो कुछ सवाल ही नहीं है।
नहीं आरक का योग में था,
हाँ,
और उसने लास्ट में एक समय बाकी रहा और उसने का योग पलट हुआ, पर योग का पलट ना हुआ,
परंतु यहाँ उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट, क्योंकि उत्कृष्ट बंद करके आया ही नहीं कोई जीव यहाँ पर, यहाँ कोई घटने का कार्य ही नहीं होता है, जितना है उतना ही रहते ना। देखो स्वामित्व निकालो, यहाँ तो हम काल देख रहे हैं, स्वामित्व में देखना वो आहारक का योगी वाले की, उसमें जघन्य किसके होता है उसकी बात नहीं, उत्कृष्ट अच्छा हमको देखना है, उत्कृष्ट उत्कृष्ट 18 में तो जघन्य लिखा है। हाँ 12 पेज 12 में नारकी है, आहारक का योग 13 में है नीचे। तो 28 प्रकृति की सत्ता वाला वेदक सम्य दृष्टि उत्कृष्ट अनुभाग के साथ आहारक शरीर को उत्पन्न होता है, यानी उसका उसका कोई वहाँ घटना नहीं हो रहा है,
वहाँ पे तो
वो उत्कृष्ट के साथ आया है उतना ही रहेगा उसका, यही बात होती है। उत्कृष्ट अनुभाग वाला विशेषार्थ, कोई एक मनोयोगी या वचन योगी उत्कृष्ट अनुभाग का विनाश करके उस समय अनुत्कृष्ट, ये आहारक की बात नहीं चल रही है, सामान्य की बात चल, उस समय अनुत्कृष्ट अनुभाग वाला हुआ, जब उसके मनोयोग या वचन योग का काल एक समय शेष रहा, यानी उसके बाद उसका योग पलटेगा, इस प्रकार एक समय तक विवक्षित योग के साथ अनुत्कृष्ट अनुभाग में रहा और दूसरे समय में योग बदल गया, तो विवक्षित वचन योग या मनोयोग में अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय होता है। ये बात ख्याल आई? नहीं, अंतर्मूर्त के लिए इतना योग रहा, अभी यहाँ उसने उत्कृष्ट किया था, उत्कृष्ट में से वो अंतिम समय में अनुत्कृष्ट हो गया और वो एक समय के लिए अनुत्कृष्ट रहा, और यहाँ तो योग पलटने का काल आ ही गया था, तो वही अनुत्कृष्ट रहेगा परंतु उसका वचन योग के बदले मनोयोग हो जाएगा।
वही अपेक्षा से मैंने पूछा ना, आरक का योग में जब भी वचन योग मनोयोग होता है और अंत में जाके जाके आहारक का योग हुआ और एक समय के लिए आहारक का योग दे रहा और उसके पश्चात उसका उदारी का योग हो गया,
परंतु आहारक का योग में रहते हुए उसका जितना अनुभाग था उतना ही रहा,
हाँ,
घटने का कोई कार्य नहीं हुआ।
एक समय बात कर रहा हूं।
वही तो मैं बता रही हूँ आपको,
वहाँ पे वो नहीं पलटेगा, पर उत्कृष्ट का और अनुत्कृष्ट का एक समय जो देखा हमने, वो मरण की अपेक्षा होगा कि योग पलट,
मरण के ही अपेक्षा होगा। योग पलटेगा तो एक समय में तो नहीं पलटेगा। यहाँ जो अभी हम घटित कर रहे हैं, तो जिसने उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया है उसका अंतर्मूर्त में नियम से अनुत्कृष्ट होता है, वहाँ वैसी कोई सहूलियत नहीं है। आहार का योग के रहते हुए अनुभाग घटने का कोई कारण नहीं है। उत्कृष्ट है ना, वो उसके योग्य उत्कृष्ट है, वो ओग उत्कृष्ट नहीं है। वहां पर ओग में जो उत्कृष्ट है वो अंतर्मूर्त कम होता है, परंतु इसको देखो, जैसे हमने देखा था सर्वार सिद्धि में, सर्वार सिद्धि के योग्य जो उत्कृष्ट के साथ आया है वो पूरे लाइफ टाइम तक उत्कृष्ट रहता है। वैसे आहारक का योग के लिए जो उत्कृष्ट है वो पूरा आहारक मिश्र आहारक का योग सब में उतना का उतना रहेगा, पूरा। यानी वहाँ कितने भी बार वो उसके मनोयोग वचन योग हो जाए, काय योग पलटे, उतना का उतना रहेगा उसको, उसमें कोई रुका यानी घट नहीं होगी। क्यों? वहाँ कोई सपना का कार्य नहीं होता है, वो एक वहाँ कोई विसंयोजना का कार्य नहीं होता, तो अनुभाग घटने का कोई कार्य वहाँ नहीं होता। ये जो सामान्य में इन जनरल हम जो देखते हैं अंतर्मूर्त में घटता ही है, वो उत्कृष्ट बंद करने के बाद अंतर्मूर्त में घटता ही है, अनुत्कृष्ट होता है, उसकी बात है। ये हमें विशेषार्थ पढ़ रहे थे, ये एक समय हमने घटित करके, ये चार लाइन हो गई, पांचवी लाइन में, अथवा यानी एक समय में अनुत्कृष्ट हुआ और योग पलटा, अथवा अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाला कोई जीव मनोयोगी या वचन योगी हुआ, एक समय तक विवक्षित योग में रहकर उसने दूसरे समय में उत्कृष्ट अनुभाग बंद कर लिया। दोनों ही ओर से हम देखते, उसमें आया है अनुत्कृष्ट के साथ, उस योग में आया, एक समय के लिए अनुत्कृष्ट रहा, दूसरे समय में उसने उत्कृष्ट का बंद किया। अथवा दूसरे समय में मरकर अन्य का योगी हो गया, मनोयोगी या वचन योगी में एक समय तक रहकर मर गया। अब मरने के बाद तो मनोयोग वचन योग तो नहीं होगा, कार्मण का योग होगा या औदारिक मिश्र होगा या वैकृत मिश्र होगा, या था योगी जो कोई अन्य योगी होगा, अन्य काय योगी हुआ, तो भी एक समय काल बन जाता है। ये बात ख्याल में आई? मनोयोग या वचन योग में एक समय में रहा, मर गया, तो नेचुरली अभी उसका कोई तो काय योग ही होगा। अपर्याप्त अवस्था या विग्रह गति में ना मनोयोग होता है ना वचन योग होता है। क्या कहा? वो तो अपर्याप्त अवस्था में नहीं होते। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त इसलिए है कि, यानी अनुत्कृष्ट में रहने का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है इसलिए कि मनोयोग या वचन योग और वचन योग का उत्कृष्ट काल इतना ही है। यानी उसने उत्कृष्ट का बंद ही नहीं किया, पूरे अंतर्मूर्त तक अनुत्कृष्ट ही रहा, तो उसका उत्कृष्ट काल एक अंतर्मूर्त घटित होता है मनोयोग या वचन योग में। औदारिक का योग का उत्कृष्ट काल, औदारिक का योग में रहने का उत्कृष्ट काल पहले बता रहे, फिर वो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात करेंगे। कुछ कम 22,000 वर्ष एकेंद्रीय जीवों में सबसे अधिक स्थिति वाले खरा पृथ्वी का एक जीव के होता है। पृथ्वी का एक भी अलग टाइप के है ना, ये खरा वाले हैं। एक तो मृदु पृथ्वी भी होती है, और खरा पृथ्वी ने अभी कोई हीरा माणिक वगैरह है वो खरा पृथ्वी वाले हो जाएंगे। 22,000 वर्ष की आयु है और उसमें एक अंतर्मूर्त औदारिक मिश्र में चला जाता है, अतः उनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष का, यानी 22,000 में से औदारिक मिश्र का अंतर्मूर्त माइनस किया। जो जीव उत्कृष्ट अनुभाग के साथ वैकृत मिश्र का योगी हुआ और उत्कृष्ट अनुभाग का काल बीतने पर वह अनुत्कृष्ट अनुभाग वाला हो गया, उसके अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। आपका प्रश्न था ना कौन सा काल बड़ा है, तो उत्कृष्ट में रहने का अंतर्मूर्त है वो छोटा है, और वैकृत मिश्र की बात चल रही उसका अंतर्मूर्त बड़ा है, तो उसमें से वो माइनस करेंगे तो भी अंतर्मूर्त शेष रहता है। और जो अनुत्कृष्ट अनुभाग के साथ ही वैकृत मिश्र का योगी हुआ उसके उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त होता है। कार्मण कायोग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है, और उसमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल भी उतना ही है, क्योंकि उतना ही अनुभाग, उसमें कोई घटने का बढ़ने का कार्य नहीं है, तो उत्कृष्ट के साथ आया तीन समय तक उत्कृष्ट रह सकता है। आहारक कायोग का जघन्य काल एक समय, आहारक की बात है मिश्र की नहीं, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, तथा आहारक मिश्र का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, अतः उनमें रहने वाले उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का, यानी जिसके उत्कृष्ट होगा वो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त तक रहेगा, जो अनुत्कृष्ट के साथ है उसके अनुत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त तक रहेगा, उतना ही काल जानना। वेद की अपेक्षा, यानी वेद मार्गणा में चलेगी अभी बात, स्त्री वेदी और पुरुष वेदियों में मोहनीय कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय है। स्त्री वेदी में मोहनी के अनुत्कृष्ट अनुभाग एक समय कैसे होगा,
अंत में अनुत्कृष्ट हुआ।
हाँ, किसी विशिष्ट वेद वाला जीव है वो उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट हुआ
एक समय के लिए रहा,
एक समय के लिए, और फिर मरकर अन्य वेद के साथ उत्पन्न हुआ, कोई भी नपुंसक वेद हो जाए, पुरुष वेद हो जाए, और उत्कृष्ट काल क्रमशः दो लिए ना, स्त्री वेदी और पुरुष वेदी, तो स्त्री वेदियों में सौ पृथक्त्व पल्य और पुरुष वेदियों में सौ पृथक्त्व सागर। अपगत वेदी में मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, क्योंकि यह मरण की अपेक्षा उपलब्ध होता है, यानी अपगत वेद में रहा और उत्कृष्ट विभक्ति है, उत्कृष्ट विभक्ति के साथ अपगत वेदी वाला कौन सा जी होगा,
24 की सत्ता
वाला, उपशम श्रेणी वाला है ना, 24 की सत्ता वाला,
24 की सत्ता।
जघन्य काल एक समय इसलिए कहा कि उपशम श्रेणी में अपगत वेद होते ही एक समय तक रहकर उसका मरण हुआ। मरण हुआ तो क्या हुआ, अनुभाग बढ़ेगा,
नहीं नहीं, वो अपगत वेदी में से वेद वाला हो,
हाँ अपगत वेदी में से वेद वाला हो जाएगा, कौन सा वेद होगा,
पुरुष वेद,
पुरुष वेद, क्योंकि अपगत वेद में ये मुनिराज मरते हैं तो पुरुष वेद में उत्पन्न होंगे देवों में, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अपगत वेद में रहने का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ये ऊपर माहनीय दिख रहा है, मोहनीय, अपगत वेदी में मोहनीय, ये उत्कृष्ट का काल देखा, हाँ उत्कृष्ट जघन्य और उत्कृष्ट, तथा अपगत वेदी में ही अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, वैसे ही लेना इसको भी। कषाय मार्गणा में कषाय की अपेक्षा क्रोध कषाय वालों में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, जैसे योग में घटित किया था, अन्य कषाय में से क्रोध में आया, क्रोध कषाय में आया, और एक अंतर्मूर्त में अनुत्कृष्ट में से उत्कृष्ट रहने बंद किया तो अनुत्कृष्ट एक समय के लिए रहा, या क्रोध का काल में उत्कृष्ट में से वो अनुत्कृष्ट हुआ और एक समय में कषाय बदल गई, तो भी एक समय होगा। उत्कृष्ट काल तो उसका एक अंतर्मूर्त होता है, क्योंकि अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में क्रोध मान माया लोभ चेंज होते रहते हैं। इसी प्रकार मान माया और लोभ में जानना चाहिए। कषाय रहित जीवों में मोहनीय कर्म की कर्म करना, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, मरण की अपेक्षा उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। यहां भी जितनी जितने के साथ है उतना ही अनुभाग रहेगा उसका। और उत्कृष्ट अनुभाग कैसे और जघन्य कैसे होगा, तो जघन्य में हमने देखा था
दो बार,
हाँ ये दो बार आया, दूसरी बार आया है, कषाय रहित लेना है ना, तो दूसरी बार आया है। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, इसी प्रकार ये देखो दूसरी बार यहाँ किस मार्गणा कौन सी चल रही है, कषाय रहित यानी ग्यारहवा गुणस्थान, तो सब श्रेणी के दो बार आया है ना, अभी दूसरी बार आया है, दो बार चढ़ के उतरा नहीं कह सकते ना, तो हमको ग्यारहवा गुणस्थान में रखना है ना उसको, इसलिए तो ये दूसरी बार आया ग्यारहवें में। इसी प्रकार यथाख्यात संयत और सूक्ष्म सांप्राय संयतों के जानना चाहिए। विशेषत जो स्त्री वेद और पुरुष वेद में उत्कृष्ट का बंध करके क्रमशः आयु के अंत में एक समय तक अनुत्कृष्ट अनुभाग के साथ रहकर अन्य वेद के साथ उत्पन्न हो गया, उसके अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय होता है, तथा उक्त काल उत्कृष्ट काल दोनों वेदों की अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। सौ पल्ल्य पृथक्त्व और सौ सागर पृथक्त्व हमने देखा था, क्रोधादि कषायों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होने से ये कषाय में एक समय घटित होता है। वहां तो व्याघात से भी होता है, अन्य कषाय में से क्रोध में आता है, इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। कषायों के समान ही ओ कषायी सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के घटित कर लेना चाहिए। ज्ञान की अपेक्षा विभंग ज्ञानियों में मोहनीय कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि विभंग ज्ञानी जो स्वयं बांध रहा है उत्कृष्ट अनुभाग, अंतर्मूर्त के बाद उसने जघन्य किया और एक समय में मर गया, तो उसका एक समय घटित होगा। और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है। मैं वो ये 33 सागर में कुछ कम क्यों कहा, तैतीस सागर कहाँ का लेना, पहले विभंग ज्ञानी है, नीचे करो ऊपर नहीं जाना नीचे। हाँ, कम क्यों,
अपर्याप्त
दशा में विभंग ज्ञान नहीं होता, अपर्याप्त दशा अपर्याप्त है ना, शरीर पर्याप्ति पूरी होगी, पूरी सभी पर्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि मन का कार्य शुरू है ना तभी विभंग ज्ञान होगा।
और ये एक समय के लिए तो मनुष्य अतिरिक्त में ही होगा ना विभंग ज्ञान,
विभंग ज्ञान एक समय के लिए ऐसा नहीं लेना, विभंग ज्ञान रहते हुए
उत्कृष्ट अनुभाग या अनुत्कृष्ट,
उत्कृष्ट वो कर रहा था
तो
उत्कृष्ट
तो
में से अनुत्कृष्ट हुआ
और तो उत्कृष्ट होगा तो
वो मर गया तो उसका विभंग ज्ञान भी चला जाएगा।
नहीं, पर देव में और नारके में तो विभंग ज्ञान है ही नियम से,
है ना।
हाँ।
मिथ्या दृष्टियों के विभंग ज्ञान ही है।
विभंग ज्ञान के 31 सागर, उत्कृष्ट स्थिति 31 सागर में कुछ कम होगा।
हाँ, देव में 31 सागर है।
हाँ, पर वहाँ पे एक समय घटित नहीं होगा,
एक समय ऐसा घटित करना है कि वहां कभी भी उत्कृष्ट का बंध करता है, आयु के अंत में उसने उत्कृष्ट का बंध किया है।
अच्छा,
उसके विभंग ज्ञान तो आयु के अंत तक चलेगा, तो उसने आयु के अंत में थोड़ा पहले उत्कृष्ट, उसके योग्य उत्कृष्ट ले लो ना। यहाँ तो हम नरक में घटित कर रहे, 31 सागर का जो बोल रहे हैं, तो
उत्कृष्ट के साथ वो 31 सागर वाला
उसमें होता ही नहीं उसका उत्कृष्ट, उनके योग्य वाला उत्कृष्ट कह सकते हैं। फिर भी वहाँ अनुभाग तो बढ़कर नहीं बांधेंगे, जितना है उससे तो बढ़कर नहीं बांधेंगे। तो यहाँ इसलिए नरकी को ही लिया है, 33 सागर वाला जो लिया है वो नारकी में कुछ कम इसलिए कहा कि उत्कृष्ट में क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं होता। और दूसरी बात, एक समय जो घटित किया है, अभी नारकी जो है वो कभी भी उत्कृष्ट बंद कर सकता है, आयु के अंत में उत्कृष्ट बंद किया, फिर उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट हुआ और एक समय में मर गया, तो उसका विभंग ज्ञान नहीं रहेगा। विभंग ज्ञान के साथ एक समय के लिए उसका अनुत्कृष्ट रहा, आदि निबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानियों में सारे समय दृष्टि है। मौन्य कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का, ये जो अभी मार्गणाओं में जब उत्कृष्ट कहते हैं तो उनके अपने योग्य उत्कृष्ट लेना, क्योंकि ये समय दृष्टि है तो द्विस्थानिक ही होता है उनका उत्कृष्ट भी। जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 66 सागर है, यानी अनुत्कृष्ट के साथ उसमें रहने का काल लिया अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 66 सागर। मनपरे ज्ञानियों में मौन्य कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि है, ये मनपरे ज्ञान का काल लिया उन्होंने, क्योंकि उसमें रहते हुए उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट नहीं रहे परंतु मनपरे ज्ञान में अंतर्मूर्त रहे, तो उन्होंने अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा भी ले सकते हैं, या प्राप्त किया और अंतर्मूर्त में मरण हुआ, वो भी ले सकते हैं। और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि है, ये मनपरे ज्ञान में रहने का उत्कृष्ट काल, 8वें साल के बाद संयम प्राप्त किया, मनपरे ज्ञान प्राप्त हुआ और पूर्व कोटि तक रहे, तो कुछ कम पूर्व कोटि। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का भी काल होता है, यानी उत्कृष्ट के साथ रहे तो उत्कृष्ट कहेंगे, अनुत्कृष्ट के साथ रहे तो अनुत्कृष्ट कहेंगे। विशेषार्थ, जो नारकी विभंग ज्ञानी होने के दूसरे समय में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाला हो जाता है, यह दूसरी अपेक्षा ली, मरण भी नहीं ली, क्या लिया है, ये उत्कृष्ट के साथ नरक में आया है, तो शुरू में तो उसके तो वैकृत मिश्र वगैरह वो चल रहा था, और अंतर्मूर्त में जब वो अनुत्कृष्ट हो जाता है, विभंग ज्ञानी होने के दूसरे समय में अनुत्कृष्ट हो गया,
यहाँ पे उत्कृष्ट का काल वो मिश्र का काल से बड़ा बताया,
अनुत्कृष्ट
जो उत्कृष्ट के साथ आया,
एक मिनट, विभंग ज्ञानी होने के दूसरे समय में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति हो जाता है, ये ऐसा कैसा उल्टा, देखो इसका पढ़ो फिर, जो नारकी विभंग ज्ञानी होने के दूसरे समय में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति हो जाता है, उसके विभंग ज्ञान में अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय उपलब्ध होने से ये कैसा होगा, उत्कृष्ट का एक समय घटित होगा दूसरे समय में अनुत्कृष्ट हुआ है तो उत्कृष्ट के साथ एक समय रहा वो। ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का घोटाला किया कोई उन्होंने। उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाला हो जाता चाहिए। विभंग ज्ञानी होने के दूसरे समय में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाला हो जाता चाहिए, यानी विभंग ज्ञानी के पहले समय में अनुत्कृष्ट था
और
दूसरे समय में उसने उत्कृष्ट का बंद किया। पेंसिल से करो उत्कृष्ट। पहले लाइन में देखो, फिर पढ़ती हूँ। जो नारकी विभंग ज्ञानी होने के दूसरे समय में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाला हो जाता है, उसके विभंग ज्ञान में अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय उपलब्ध होने से वह उक्त प्रमाण कहा है। हमने जो घटित किया था ना आयु के अंत में, उत्कृष्ट था, अनुत्कृष्ट हुआ एक समय के लिए और मर गया तो विभंग ज्ञान उसका हट गया, इस तरह से ले सकते हैं। तथा सातवें नरक में विभंग ज्ञान का उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर होने से अनुत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर कहा है। आविनिबोधिक ज्ञान आदि तीनों ज्ञानों का जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक 66 सागर है, इसलिए इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। इन तीनों ज्ञानों में उत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यह तो स्पष्ट ही है। मात्र इसका जघन्य काल जो एक समय कहा, सो उसका यह कारण है कि जो जीव उत्कृष्ट अनुभाग में एक समय रहने पर आविनिबोधिक ज्ञानी आदि होते हैं, उनके यह काल, यह एक समय काल देखा जाता है।
ये साधिक 66 सागर में साधिक पे क्या ले देता, क्योंकि 66 सागर तो ये वेदक की अपेक्षा बताया है।
हाँ, तो उसमें उपशम का काल जोड़ दो, औपशमिक सम्यक्त्व का काल
नहीं,
उसमें
नहीं, यहाँ पे तो बात तो क्या है मतिश्रुत औदिक ज्ञानी में।
हाँ, तो मतिश्रुत है वो सम्यक दृष्टि तो होने चाहिए,
बराबर है। तो वहाँ पे साधिक 66 सागर के पश्चात तो वो लंबी आयु वाले देव में भी जा सकता है। 66 सागर के पश्चात तो उसका अनुत्कृष्ट ही रहेगा।
कौन से लंबी वाले
66 सागर, कौन सी अपेक्षा का है वो मैंने
देखो। आविनिबोधिक ज्ञान पहले में, पहले उन ज्ञान का जघन्य काल कितना है अंतर्मूर्त,
अंतर्मूर्त
ज्ञान का ही, ज्ञान का ही। हाँ। क्योंकि अंतर्मूर्त में वो मिथ्या दृष्टि हो गया।
और 32 श्रुता अवधि का एक मैक्सिमम काल कितना है, हमने तो
आविनिबोधिक तीनों ज्ञानों का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक 66 सागर है। तीन ज्ञान तो वो क्षायिक होने पर भी रहेंगे।
हाँ, तो क्षायिक होने, क्षायिक हो गए उसके पश्चात तो वो लंबे काल के लिए वो देव में भी जा सकता है। कृतकृत्य वेदक होगा वो तो देव में भी जाएगा।
हाँ।
तो उसकी लंबी आयु हो जाएगी। तो साधिक में
देखो,
क्या
फिर देखो ये हम किस पे साधिक घटित कर रहे हैं, ऊपर देखना मूल में। आविनिबोधिक ज्ञानी, श्रुतक ज्ञानी मिला ना,
और औदिक
ज्ञानी मौनी की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय।
एक समय तो समझ में आए, ये साधिक 66 सागर दिया है।
और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त यही वहाँ पर, और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल, अनुत्कृष्ट काल चल रहे ना,
हाँ।
उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 66 सागर है, तो कुछ अधिक में वो क्षायिक का भी जोड़ देना, क्योंकि जब तक वो अनुत्कृष्ट ही रहेगा, जघन्य भी कर दिया तो भी अनुत्कृष्ट ही
हाँ,
रहेगा
हाँ। हाँ। नहीं तो साधिक में तो बहुत बड़ा काल हो जाएगा ना पीछे, क्योंकि वो
हाँ होने दो, ये वेदक का 66 लिया, आगे कितना ले सकते,
आगे वो सर्वार्थ सिद्धि भी
33 वाला ले लो और क्या है,
और पीछे लास्ट वाला मनुष्य भव
वही वो उसको लेके ही लेगी ना। हाँ उपशम समय तो भी ले सकते हैं, अनुत्कृष्ट के साथ है ना, उत्कृष्ट है ही नहीं वो, अनुत्कृष्ट लेना
उपशम समय के तो पहले समय में तो उसका उत्कृष्ट होगा
उपशम के योग्य, पर अभिनिबोधिक के योग्य लेना है हमको,
अभिनिबोधिक में भी उत्कृष्ट वाला तो पहले समय में ही होगा, उसके पश्चात तो वो अनुत्कृष्ट ही हो जाएगा,
एक एक समय में तो नहीं होगा फिर भी वो अनुत्कृष्ट तो हो जाएगा
हाँ। हाँ।
इसीलिए उसको साधिक में वो सब कुछ ले सकते हैं, यहाँ अभिनिबोधिक का ही काल लेना है
हाँ।
पूरे अभिनिबोधिक का काल कहा है इसको
हाँ।
तो अभिनिबोधिक मतिश्रुता अवधि ज्ञान उसके रहने चाहिए, इतना ही उसका उत्कृष्ट काल है। जब हम 66 सागर कहेंगे तो पूरे 66 सागर तक उसको अवधि ज्ञान भी रहेगा क्या, मतिशुद्ध ज्ञान ही तो रहेंगे, नहीं रह सकता वो भी बात नहीं है हाँ। हाँ, देखो हम नीचे मन परे ज्ञान का भी पढ़ेंगे, मन परे ज्ञान का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है, इसलिए इसमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि कहा, वो उत्कृष्ट हो या अनुत्कृष्ट उसमें रहने का काल उसका, यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय संभव नहीं है, क्यों, कारण कि जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभाग के साथ मनोपरि ज्ञान को उत्पन्न करता है वह उत्कृष्ट अनुभाग कम से कम अंतर्मूर्त काल तक अवश्य रहता है, तथा उत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट काल जो कुछ कम एक पूर्व कोटि कहा है उसका कारण यह है कि क्रिया के बिना उत्कृष्ट अनुभाग का घात न होकर उसका इतने काल तक अवस्थान संभव है। क्रिया के बिना का अर्थ क्या है, वहां कोई विसंयोजना आदि कोई कार्य नहीं किया है, क्रिया के बिना अभिनिबोधिक ज्ञानी में तो लिया था एक समय, मनपरे ज्ञान में नहीं लिया। अब नीचे का देखते हैं, संयम की अपेक्षा संयतों में मौन्य कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त, यानी संयम का ही काल लिया उन्होंने अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है, क्योंकि क्रिया के बिना अनुभाग का घात नहीं होता, यानी 8वें वर्ष के बाद उन्होंने संयम प्राप्त किया है
पूरी लाइफ
हाँ, और वहाँ कोई विसंयोजन आदि का कार्य नहीं किया। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का, संयतों में ही बात चल रही है, अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि है। इसी प्रकार सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत और संयता संयतों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सामायिक और छेदोपस्थापना स्थापना को रह गया, सामायिक और छेदोपस्थापना संयतों में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, ये कैसे होगा?
एक समय में मरण हो गया छठे गुण उसका।
कब?
नहीं नहीं, अच्छा वो सूक्ष्म संप्राय से एक समय में,
हाँ उपशम श्रेणी में, उपशम श्रेणी में चढ़कर उतरने वाले का नवे में आते ही सामयिक छदोपस्थापना शुरू हुआ और एक समय में मरण हुआ, तो उसका होगा है विशेषण।
तो सामयिक छेद, अच्छा अनुत्कृष्ट तो उत्कृष्ट में भी हो सकता है, नहीं उत्कृष्ट वाला नहीं हो सकता एक समय, ये अनुत्कृष्ट का एक समय बताया।
हाँ अनुत्कृष्ट का एक समय लिया है यहाँ पर, क्योंकि सामयिक छेदोपस्थापने उत्कृष्ट तो जो
छठे
श्रेणी चढ़ने के पहले उसको गठित करेंगे वेदक समय दृष्टि के। देखो विशेषार्थ, यहाँ सब काल का स्पष्टकरण मन परे ज्ञान के समान कर लेना चाहिए, मात्र सामयिक संयम और छेदोपस्थापना संयम का जघन्य काल एक समय होने से ये उपशम श्रेणी में मरण, उतरते समय मरण, नवे में आते ही मरण होगा, तो इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय कहा है। दर्शन की अपेक्षा चक्षु दर्शनियों में मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, चक्षु दर्शनी है चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रियों में उत्कृष्ट अनुभाग का बंद किया
और एक समय में मरण हो गया,
मरण करके कहां गया? तीन इंद्रिय या नीचे गया, यानी मात्र अचक्षु में गया, पहले भी अचक्षु तो था उसके, पंचक्षु दर्शन ही था ना ये। देखो चक्षु दर्शनियों में मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, कहीं भी उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होता है, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 2000 सागर। अवधि दर्शनियों में अवधि ज्ञानी के समान भंग है। विशेषात जो चक्षु दर्शनी भव के अंतिम समय में उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट अनुभाग करके मरकर द्वितीय समय में अचक्षु दर्शनी हो जाता है, उस चक्षु दर्शनी के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय देखा जाता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा शेष कथन स्पष्ट ही है। अब लेशा, लेशा की अपेक्षा कृष्ण नील और कापोत लेशा वालों में मोहनीय कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल, देखो एक समय तो हम मनुष्य तिरियंचों में भी घटित करते हैं, क्योंकि जैसे हमने योग का और क्रोध का एक एक अंतर्मूर्त देखा और उस विशिष्ट योग या कषाय में या यहाँ लेशा में आने पर उसका वो चेंज हो गया, अनुत्कृष्ट के साथ आए बाद में उत्कृष्ट बांधा, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ तो जघन्य एक समय होगा और उत्कृष्ट काल क्रमशः कुछ अधिक 33 सागर, क्योंकि कृष्ण लेशा में रहने का काल है कुछ अधिक 33, क्योंकि वहां जाने के पूर्व एक अंतर्मूर्त तक कृष्ण लेशा शुरू हुई, कृष्ण लेशा में मरण हुआ, कृष्ण लेशा में वहां 33 सागर बिताए और उसी लेशा के साथ यहाँ मनुष्य में आया या तिरंज में आया, मनुष्य में तो नहीं आएगा तिरंज में ही आएगा, सातवें नरक से लाना है ना। तो कुछ अधिक 33 सागर, कुछ अधिक 17 सागर और कुछ अधिक 7 सागर हैं। ये कृष्ण की उत्कृष्ट आयु, नील की उत्कृष्ट आयु और कापोत की उत्कृष्ट आयु ली। तेजोलेशा और पद्मलेशा वालों में मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाला, विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल क्रमशः कुछ अधिक दो सागर, ये सौधर्म ईशान की अधिक आयु, कुछ अधिक 18 सागर, ये कहां की सहस्रार्थ
या कुछ अधिक में आधा सागर बढ़ जाएगा ना, सहस्रार में भी घटा है उसको तो ना,
ये नीचे तो आधा सागर बढ़ता है, या भी वहां भी अंतर्मूर्त कम आधा सागर ऐसा कुछ है, कुछ अधिक में शुक्ल लेशा में मुनि कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर है, ये शुक्ल लेशा का उत्कृष्ट काल है यहाँ पर विशेषार्थ। शुक्ल लेशा तो मनुष्य 3 इंच में भी होती है ना, हाँ कुछ अधिक 33 सागर में ऐसा ही है, वो वहां जाने वाला शुक्ल लेशा में ही मरेगा और वहां से आकर शुक्ल लेशा में ही जन्मेगा, तो पूर्व का और अंत का दोनों ही अंतर्मूर्त बढ़ाने। विशेषार्थ, जो कृष्णादि 5 लेशा वाला जीव अपने अपने लेशा के प्रारंभ में एक समय तक अनुत्कृष्ट विभक्ति वाला होता है, उसके अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय होता है। इसी प्रकार यानी बाद में उसने उत्कृष्ट का बंद किया, इसी प्रकार पितादि 3 लेशाओं में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय घटित कर लेना चाहिए। मात्र शुक्ल लेशा में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि इस लेशा में अनुत्कृष्ट के बाद पुनः उत्कृष्ट की प्राप्ति संभव नहीं है, ये इसकी विशेषता है। अनुत्कृष्ट तो करेगा परंतु उसके पश्चात फिर उत्कृष्ट नहीं होगा। शेष कथन स्पष्ट ही है, हो गया। और एक सम्यक्त्व की अपेक्षा यानी सम्यक्त्व मार्गना, सम्यक दृष्टियों में मोहनी कर्म की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का काल आभिनिबोधिक ज्ञानियों के समान है। वेदक सम्य दृष्टियों में भी इसी प्रकार होता है। इतनी विशेषता है कि अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का उत्कृष्ट काल वेदक सम्यक्त्व की स्थिति प्रमाण अर्थात 66 सागर होता है। क्षायिक सम्य दृष्टियों में मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि क्षायिक प्राप्त करने के बाद उसने अंतर्मूर्त में उपशम श्रेणी चढ़ी या क्षेणी चढ़ी है, और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर है। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का भी काल होता है। उपशम सम्यक दृष्टियों में मुनि कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का भी काल होता है, क्योंकि उपशम सम्यक तो ही अंतर्मूर्त के लिए होता है, इसलिए अधिक काल तो नहीं होगा वहां पर। सासाधन सम्य दृष्टियों में मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 6 आवली है, ये गुणस्थान का काल बताया। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का भी काल होता है। सम्यक मिथ्या दृष्टियों में मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और यानी उत्कृष्ट के बाद वो अनुत्कृष्ट कर देगा। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है।
इस असाधन सभी दृष्टियों में द्विस्थानी ही होगा ना?
हाँ, सासाधन में द्विस्थानिक हमने देखा था, परंतु वो सासाधन के लिए उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट समझना वहां पर। होगा क्या ये? इसको कर लेते हैं, इन्हें पूरा विशेषात पढ़ेंगे तो हमने जो अभी पढ़ा था वो फिर रिवीजन भी हो जाएगी अपनी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नो सदा देत हो। अश्विन भाई
नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो उज्जैनम नमो लोहे सुब्बसावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो